संगम युग है अनुभव करने का युग, किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करो, सत्य को खुद जानने की कोशिश करो, क्योंकि जो दूर दूर से हमारे कानों में सत्य पहुंच रहा है और जिसे हम सत्य समझते हैं शायद वो सत्य है ही नहीं। उसमें कई लोगों ने अपने विचारों का मसाला तेल मिर्च डाल डालकर उसे इतना स्वादिष्ट बनाकर परोस रहे हैं कि हम ही नहीं समझ पा रहे ये है क्या और सत्य क्या है। तो क्या कहा बाबा ने, सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करना, क्योंकि एक बार पार जो बात फैल जाती है फिर वो पुजारी कितना ही कहता रहा उनको कि नहीं नहीं नहीं, वो लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। ऐसा ही हुआ है, तुम जरूर कुछ छुपाते हो हमसे। इसलिए आपने कहा अनुभव, एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट ऑथोरिटी, अनुभव सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। अनुभवी आत्मा कभी भी धोखा नहीं खाती। संगम युग कॉन्फ्लुएंस किसका युग है, एज ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव करने का युग है। इसमें हर बात का अनुभव करना है, किसी भी बात को वैसे स्वीकार ही नहीं करना है, सत्य ढूंढना है, सत्य की खोज करना है, सत्य का अन्वेषण करना है। सत्य है क्या, किसी ने कह दिया, किसी ने बोल दिया, कहीं पर लिखा हुआ है, परंपरागत चला रहा है, ये सत्य नहीं। हर बात को ढूंढना है, हर बात को समझना है, हर बात की गहराई में जाना है और ये करना ही जीवन का लक्ष्य है। नहीं तो हम बड़ा ही धोखे वाला जीवन जी रहे हैं। ढूंढना है, खोज चालू रही, आस्क एंड यू शैल रिसीव, नॉक एंड इट शैल ओपन, सीक एंड इट शैल फाइंड। ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा, मांगो तो मिलेगा। सत्य जो है, ट्रुथ जो है, उसकी खोज करनी होती है, ऐसे नहीं मिल जाते। बड़ी तपस्या है सत्य, हर चीज का सत्य ढूंढना। नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर जो चल रहे, बस मुरली में आया बहुत अच्छी बात है, हमने माना वो भी बहुत अच्छा है, परंतु सत्य हमने ढूंढा नहीं। हर सत्य की खोज करनी होती है गहराई से। तो आज हम चर्चा करेंगे पार्टियों से मुलाकात, दो पार्टियां थी, पार्टी एक और पार्टी दो, संडे की दौरान। उसमें पार्टी जो एक थी उसमें तीन बातें थी। सबसे पहली बात थी, यदि हम एक ट्रायंगल बनाए, एक त्रिकोण, बाप संगम युग और हम बच्चे, बाबा ने कहा जो संगम युग की विशेषता है वो तुम्हारी विशेषता है, जो तुम्हारी विशेषता, जो बाप की विशेषता है वो भी तुम्हारी विशेषता है। तो ये तीन चीजें जुड़ी हुई है, ये जो ट्रायंगल है, द फादर कॉन्फ्लुएंस एज एंड चिल्ड्रन, ये तीन जो लोग है, ये तीनों से विशेषता है। तो उसमें तीन बातें बाबा ने कही। सबसे पहली बात, संगम युग श्रेष्ठ युग है, तुम बच्चे श्रेष्ठ बच्चे हो। संगम युग प्राप्ति स्वरूप है, तुम बच्चे भी प्राप्ति स्वरूप हो। तुम्हें यहां सब कुछ मिला हुआ है, भंडारा भरपूर है। जैसे बाप के लिए कहते हैं भंडारा भरपूर, वैसे तुम्हारे लिए भी कहते हैं भंडारा भरपूर। तो ये तीन चीजों को जोड़ना है, क्या क्या विशेषता है तीनों में, जो एक ही है, हम बच्चे एक युग और बाप, क्या विशेषता है, तीनों ही कल्याणकारी है, तीनों ही श्रेष्ठ है, तीनों ही प्राप्ति स्वरूप है, और क्या विशेषता है, तीनों को जोड़ना है, हेरे तुल्य बाप हेरे तुल्य बाप हेरे तुल्य, ऐसी बातें बताना है जो तीनों को जोड़ दे। खजानों से भरपूर, बाप भी खजानों से भरपूर है तो युग भी खजानों से भरपूर है तो हम भी खजानों से भरपूर है। तीन चीजें हैं, बाप हम और युग और परिवर्तक, संगम युग परिवर्तन युग है। बाप भी विश्व परिवर्तक है, हम भी विश्व परिवर्तक है। और एक चिंतन का विषय है, राजू से परे, हम भी राजू से परे, बाप भी राजू से भरा और ये युग भी राजू से भरा हुआ युग है। तो तीन चीजें यहाँ पर बाबा जी नहीं, सबसे पहली हम श्रेष्ठात्मा है, हम प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं और हमारी तुलना बाबा ने अपनी विशेषता से की और संगम युग की विशेषता से की। दूसरी बात, संगम युग एक पुरुषोत्तम युग और तुम भी पुरुषोत्तम, वो अज्ञानी तुम ज्ञानी, तुम श्रेष्ठ वो शूद्र, वो दुखधाम में तुम सुखधाम में, ये वर्णन किया है। संसार की आत्माओं से ब्राह्मण आत्माएं सुखी है, क्यों? क्या नहीं है
तीनों का ज्ञान
ज्यादा असंतुष्ट कौन है? हम ये हो असंतुष्ट, मैं असंतुष्ट पूछ, ज्यादा असंतुष्ट कौन है, वो या हम? वो फिर से सोचो, उनकी कोई असंतुष्टता है? धन नहीं है, ये भी कोई असंतुष्टता है, एकदम तुच्छ कोटि की असंतुष्ट है। धन नहीं है, संतान नहीं है, प्राप्ति नहीं है, पैसा नहीं है, पद नहीं मिला, ये भी कोई अतृप्ति है? अतृप्त हो तो हमारे धंधे से, हमें तृप्ति नहीं मिल रही है, संपूर्णता जब तक ना प्राप्त हो जाए हम अतृप्त है। हमारी असंतुष्टता महान असंतुष्टता है, उनकी भी कोई असंतुष्टता है? पैसे चाहिए, पत्नी चाहिए, घर चाहिए, ये बीमारियां भी इसे छोड़ो बाबा, ये है छोटी मोटी एकदम निकृष्ट, हमारी कैसी महान असंतुष्ट। हमारा लक्ष्य कितना है और वो हो नहीं रहा है, इसको कहा जाता है द डिवाइन डिसकंटेंट, दैवीय असंतोष है, ईश्वरीय असंतोष है। युग पुरुषोत्तम, हम पुरुषोत्तम और बाप पुरुषोत्तम बनाने वाला। तीसरी बात इससे जुड़ी हुई, संगम युग सुखधाम है, सतयुग के लिए नहीं कहा, संगम युग के लिए कहा। आपकी तुलना में संसार के लोग बहुत दुखी है। अब दूसरा प्रश्न है, हम ज्यादा दुखी है या संसार के लोग ज्यादा दुखी है? वो लोग ज्यादा दुखी है, फिर से बताओ। मीरा रोए चुपके चुपके, मेरा दर्द न जाने कोई। हमारा दुख अलग प्रकार का दुख है, और इसे दुख भी नहीं कहा जा सकते, बड़ा ही मीठा सा दुख है, बड़ा ही मीठा सा दर्द है। और दर्द ऐसा है कि पूछो, बड़ा ही विचित्र है ये दर्द। दर्द सूक्ष्म है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि प्रेम बिना दर्द के होता नहीं। और इसे वैसा दर्द नहीं है जैसे संसार के लोगों का होता है। उनके भी कोई दुख है, पाई पैसे के दुख, ऐसा दुख चाहिए हमारे जैसे दैवी दुख, महान दुख। क्यों दुख है? क्योंकि बाप समान क्यों नहीं बन रहे, पुरुषार्थ महान क्यों नहीं हो रहा, अमृत वेला पावरफुल क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं कर पा रहे जो हम सोच रहे हैं पर हो नहीं पा रहे। किसी को दुख है मुरली याद नहीं रहती, किसी को दुख है कि मुरली याद तो सब है परंतु बुद्धि में कुछ नहीं कुछ, तो केवल मुक्त है। किसी को दुख है मुरली तो याद है और धारणा भी है थोड़ी थोड़ी, परंतु समय पर कुछ भी काम नहीं आता, सब फेल हो जाता है बाद में काम आता है। और किसी को याद भी है धारणा भी है सब कुछ भी है, सब कुछ होते हुए भी योग तो बिल्कुल लगता नहीं पर शरीरपन होता नहीं। अलग अलग श्रेणियां हैं हर एक के अपने अपने दुख। मुरली ना याद रहने वालों के दुख अलग, मुरली याद रखने वालों के दुख अलग, क्लास कराने वालों के दुख अलग। ये पॉइंट बोली थी बोली नहीं, सुनने वालों के दुख अलग, ये इतना सुना रहे और हमको याद कुछ नहीं रहता। के दुख अलग, सेवा करने वालों के दुख अलग, सेंटर चलाने वालों के दुख अलग, सेंटर में चलने वालों के दुख अलग, एक से एक महान है सारे। क्या दुख तो संगम युग श्रेष्ठ युग है, ये पहली बात। संगम युग पुरुषोत्तम युग है, ये दूसरी बात। और संगम युग ही सुखधाम है। तो जो पहली पार्टी थी उससे बाबा मिल रहे, ये मूल्य है 84 की। मुख्य मूल्य पूरी हुई, टीचर्स पहले सामने आए उनसे मिलना पूरा हुआ, उसके बाद ये पार्टी आई। हो सकता है बाबा पूरी रात बैठे थे ओम शांति भवन जहां ये मूल्य चल रही। सोचो कि वो जो ग्रुप था जिससे ये सारी बातें बाबा ने कही, उन आत्माओं ने जब ये सुना होगा उनके मन में क्या चला होगा, क्या सोचा होगा, कितना बाबा नशा चढ़ा रहे हैं आत्मा। हो सकता है उसमें से कोई दुखी था थोड़ा सा, हो सकता है किसी के जीवन में कोई समस्या थी और सीधा भगवान के सामने आकर बैठ गए वो पार्टी। बाबा से बाबा ने कहा कि यही सुखधाम है, उनसे बाबा ने कहा यही पुरुषोत्तम युग है, उनसे बाबा ने कहा यही श्रेष्ठ युग है, प्राप्तियों का युग है, यहाँ सारे भंडारे भरपूर है, खाओ और खिलाओ। जैसे बाप के लिए गाय है तुम्हारे लिए भी गाय है। बाबा आत्माओं के हृदय की बातें जान लेता है, समझ लेता है, पढ़ लेता है। वो किसी एक आत्मा से जुड़ा नहीं, सभी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसका जो इंटरैक्शन है आत्माओं के साथ वो आत्मिक तल पर है। इसके लिए वो सभी से जुड़ सकता है, हम कम लोगों से जुड़ पाते। जब हम समष्टि पूरी सृष्टि से जुड़ पाएंगे, ये सोचना जैसे एक वृक्ष है और मैं इस वृक्ष का एक पत्ता हूं। जैसे झाड़ में एक वृक्ष है, झाड़ है उसका एक पत्ता है, उस एक पत्ते को दूसरे पत्तों के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं कि ये सब एक ही झाड़ के है। जब ये हो जाएगा कि ये सब आत्मा है जिनसे मेरा कोई परिचय नहीं, वो भी मेरे और मैं सभी आत्माओं से जुड़ने लगूंगा, तब वो बाप समान स्थिति होगी। और उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है परम धाम में, उस बीज रूप स्थिति में, शांति धाम में स्थित रहना और उन सारे आत्माओं के साथ जुड़ जाना, एक हो जाना, कोई भी अलग नहीं, सब एक है। सब आत्माएं मुझ से जुड़ी हुई है, मुझ से कोई भी पृथक नहीं है, मुझ से कोई भी अलग नहीं है, मैं हर एक से जुड़ा हुआ, हर एक में वही चेतना है, हर एक में वही चैतन्य है। जब इस तल पर हमारा इंटरेक्शन आत्माओं के साथ होगा तो आप ही बेहद में जुड़ सकेंगे। तो यहां बाबा छोटे से ग्रुप से मिल रहे हैं, परंतु उसकी दृष्टि त्रिकाल है, वो उन आत्माओं को भी देख रहा है कि बाद में इसी मूल्य को बार बार पढ़ा जाएगा और उसके कौन से शब्द किस आत्मा के हृदय में जाकर तीर की तरह जुट जाते हैं वो उसे पता है। और उसे ये भी पता है कि शायद सामने जो बैठे हैं मैं इनके लिए कही, ये तो उनके लिए कहा जा रहा है जो आएंगी। किसी सेंटर पर मुरली ये चालू है और अचानक कोई भाई लेट आता है, जब ये पार्टियों से मुलाकात चालू है उतना ही सुनता है बस, और उसी में जो होना था वो हो गया। तो भगवान के मुख से निकले हुए शब्द देखो ये गहरे, कब चेतना की कौन सी परत खुल जाए और कब तीर लग जाए और कब उस शब्द से, उन शब्दों से, उन वाक्यों से जीवन के किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर मिल जाए जो आज तक मिला नहीं, जिसकी खोज जारी थी, जो कि अब तक भी अनसुलझ है। और क्या है इसके लिए पूरे झाड़ से जुड़ने की कोशिश करनी, जो अपरिचित लोग हैं ये समझना ये सब मेरे, मैं सबसे जुड़ा हूं, कोई भी भिन्न नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। इस सृष्टि पर हो रही एक एक घटना का अपना महत्व है, अगर वो घटना ना होती तो ये सृष्टि कोई और होती, अगर मेरे जीवन में वो घटना ना होती तो ये मेरी सृष्टि और ये संपूर्ण सृष्टि कुछ और होती। हर चीज का अपना अपना महत्व है। इसके लिए दो बातें हैं, परम धाम में सारी आत्माओं को एक साथ देख लेना कि ये वो सारी आत्मा है और इन सब से मैं जुड़ा हुआ हूं और इन सभी को सबसे मेरा कनेक्शन और सबके लिए शुभकामनाएं शुभकामनाएं जारी, कोई भी नहीं छूटेगा। अब इससे अतिरिक्त तो और तो भी आत्माएं हैं, बस इतनी है जो है, सारों को मैं देख रहा हूं एक साथ, और जहां जहां जीवन में जहां जहां जाऊंगा जिन जिन स्थानों पर जाऊंगा कोई ना कोई आत्मा तो वहीं की रहेगी। तो बाबा जान देते हैं, यहां तक ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं इतने सारे खत आते थे, कई कई खत को बाबा बिना पढ़े ही चूम लेते थे ऐसा हमने सुना है, और कोई कोई खत को मैं रखते थे, बदबू आती थी खत से, अभी पढ़ा भी नहीं, खत से बाहर से बदबू आ जाती थी, जरूर कुछ गड़बड़ दिख रहा है, जरूर कुछ भिखारी तो उनकी भीख मांग रहा है सामने वाले। कुछ कुछ खतों को पढ़ते नहीं थे, कुछ कुछ खतों को दिल से लगा देते, जैसे कि पहले पता चल जाता ये है ऐसा है। तो ये पहली पार्टी थी जिसमें बाबा ने ये ट्रायंगल बताया, बाप टीचर और बाप संगमयुग और बच्चे, इन तीनों में समानता है, तीनों श्रेष्ठ, तीनों महान, तीनों पुरुषोत्तम, तीनों ही सुखधाम, तीनों ही प्राप्ति स्वरूप। और ये सोचना कि मेरे पास सब कुछ है, इसमें बड़ा ही सूक्ष्म मनोविज्ञान छिपा हुआ है। एक कंगाल ये सोचे कि मेरे पास सब कुछ है, जिसके पास कुछ भी नहीं उसे सोचना क्या है, मेरे पास सब कुछ है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सोचने से कभी धन मिलता है ऐसा कोई पूछेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सूक्ष्म रूप से काम करता है, să știi o sari cizem mai apinte la capăt și tvârtă. Ce am mai ies-o și doamne, căngarul, megăricul, multe după ce s-o fărta în tine, mele zati, ai să văd că ei măcar mă picioare, să știi megeare. Or, usită la închis, să mă nanti, să mă în viciarul cu ochicile, or, fel că de n-am dat din mânul. Ies-o și terenă, că mere bază să buce. Ies-o și terenă, mea practic, fără cu ies-o și terenă, ce bană ta s-o palie, mil găia să buce, ori cuci, ori cuci, pe bană bachinei. Ei să se sărește de noi, ei să se sărește stane, este le-a dat sărește, este le-a dat mâna, ori cuci bine. E department sau se vezi department? De-a mea om. Ori e jo logere, să observe logere. Ori e jo care e de-a mea om. Ei să observe ce gând. Ori e jo pătie, e să se veste. Ori e jo vaipe, e să se veste. Ori e jo bătie aia, ei ia necerit. Ei să puteți ce. Ei sunt. Când ne ia hobby, o genie. Și ce zice? Mahatma Buddha par logo ne pavil hati chora. Chattan buri aaya. Milani ki patthar feki. Bahut kuch kiya. उनके शिष्यों ने कहा आप कुछ करते क्यों नहीं इन दुष्टों का क्या करें महात्मा बुद्ध कहते उन्हें दुष्ट भी मत कहो क्या वो दुष्ट नहीं है महात्मा बुद्ध की यदि मैं उन्हें दुष्ट कहूं तो मेरे मन में उनके प्रति कुछ ना नकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे फिर मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा उनके विरुद्ध करने के लिए वो तो अच्छा है ना वो हिसाब पूरा कर रहे हैं मैं क्यों नया बनाऊं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है उनको करने दो मेरी प्रतिक्रिया शून्य है मैं कुछ भी नहीं करूंगा यह भी नहीं सोचूंगा कि ये खराब लोग हैं अगर मैं ये सोचता हूं ये खराब है ये अच्छे लोग नहीं है ये दुष्ट लोग है ये तंग करने वाले लोग हैं मुझे ये भी मैं सोचता हूं तो भी मेरे मन में उनके प्रति गलत भावनाओं का निर्माण हो सकता है और मैं उसी अनुसार अनुसार बोल भी बोलूंगा और धीरे धीरे कभी ना कभी कर्म में भी आ जाएगा इसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा ऊंची दृष्टि उसके लिए सारी आत्माओं से जुड़ना आवश्यक है दादी जान की जब यहां से विदेश गई होगी तो किस भाव से गई होगी कैसे ये हो गया कि विश्व के सारे लोग उस आत्मा से जुड़ गए क्यों क्या खूबी थी जरूर केवल शब्द नहीं थे उनको तो कईयों की भाषा भी नहीं पता उनकी भाषा कईयों को पता नहीं तो एक आत्मा कैसे क्या जुड़ गई विश्व से जरूर जो कार्य किया गया बड़ा ही सूक्ष्म तत्व पर किया गया अनकंडीशनल लव उसने जोड़ा है कि संसार की सभी आत्माएं मेरी है और मुझे हर एक का निर्णय करना है परिचित अपरिचित चाहे कोई भी हो कैसी भी हो कहां से भी हो तो छोटे से स्थान पर रहते हुए ये सोचना मैं कहां से जुड़ कहां पर जुड़ा हूं विश्व से जुड़ा हूं हमेशा उस बीज के साथ कंबाइन रहना ताकि ये सारा झाड़ मेरे से जुड़ा है अमेरिका का बिजार्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर जिसे कहते हैं बागवानी का जादूगर डूटन बर्बांक वो सात साल तक काम करता रहा कैक्टस पर कैक्टस अर्थात वो झाड़ जिसमें काटे ही काटे निकलते और वो उस कैक्टस के साथ बातें करता था प्यार करता था उसको और कहता था कि मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूं कितने काटे हैं तुम पर और बात करता रहा करता रहा करता रहा। और पहली बार मनुष्य इतिहास में ऐसे कैक्टस को निर्माण करने में वो सफल हुआ कि जिसमें कोई कांटे नहीं थे, और ऐसे बहुत सारे उसने प्रयोग किए। लोग उस पर हंसते थे, ये क्या कर रहे हो, नोबेल प्राइज विनर और ये करते हो और ऐसा बोलते हो, क्या झाड़ भी कभी सुनते हैं? वो कहता रहता था कि सारी सृष्टि जुड़ी हुई है, कोई भी अलग नहीं है, हम सबसे जुड़े हुए हैं। तो इन झाड़ से भी मैं जुड़ा हुआ हूं, वो झाड़ भी मेरी भाषा समझेंगे। वो झाड़ से बातें करता, पत्तों से बातें करता था, फूलों से बातें करता था, और वो फर्स्ट कॉन्टेक्ट कहा गया ह्यूमन एंड प्लांट, द स्पाइनलेस कैक्टस। उसका चित्र भी आप देख सकते हो, खड़ा है ऐसा एक कैक्टस के पास जिसमें कोई भी कांटे नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए संसार। तो कहने का भाव, मैं हर आत्मा से जुड़ा हूं, मैं अलग नहीं। पत्ता ये जान ले कि ये सारे जो पत्ते हैं एक ही जान ले, मैं सभी से जुड़ा हूं, पहले से ही संबंध बना के रखती है उनसे। अब उसके बाद जो उनसे संपर्क होगा वो एक बाहर का संपर्क होगा और धीरे धीरे वो गहराई में चले। जो स्टूडेंट सेंटर पर आ रहे हैं वो उनसे हम पहले से ही जुड़े हुए हैं, जो आने वाले हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, जो नहीं आएंगे और कभी भी नहीं आएंगे उनसे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी एक ही बाप की संतान है। इसके लिए किसी को दुख यदि पहुंचता है तो हमें खुश होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, और उसमें फिर एक देश यदि दूसरे देश को दुख दे तब भी नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है, माई इंटरेस्ट आर नॉट जस्ट इंडियन बट इंटरनेशनल, मेरा लक्ष्य केवल भारत नहीं, मैं केवल भारत का निवासी नहीं हूं, वैश्विक है, यूनिवर्सल है, सार्वभौम है। चाणक्य का एक बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है जो कि वो उस महामंत्री से कहता है। वो महामंत्री उससे कहते हैं कि तुमने यदि ऐसा कुछ किया जिससे मगध का हित हो तो मुझे तुम्हें दंड देने पर विवश होना पड़ेगा। वो कहते हैं इसका निर्णय कौन करेगा कि मैं मगध का हित कर रहा हूं? मगध नंदवंश नहीं, नंदवंश मगध नहीं, और ना ही मगध मेरी मातृभूमि है, ना वो गंधार, ना वो तक्षशिला, ना ये पाटलिपुत्र, हिमालय से समुद्र पर्यंत की सारी भूमि का पग पग मेरा है। मैं कोई मगध का नहीं हूं, मैं केवल तक्षशिला का नहीं हूं, मैं केवल गंधार का नहीं हूं, ना ही मैं पाटलिपुत्र का हूं, हिमालय से समुद्र पर्यंत की सारी भूमि का पग पग मेरा है। सार्वभौम की भावना है, किसी एक देश का नहीं हूं, किसी एक राष्ट्र का नहीं हूं, किसी एक राज्य का नहीं हूं, विश्व का, विश्व के लिए आए सब मेरे हैं, सारी आत्माएं मेरी है। ऐसी देहत की भावना हृदय में जागृत हो तब कहीं जाकर हम संसार की हर आत्मा सूक्ष्म रूप से जुड़ जाते हैं, और वो सबसे बड़ी सेवा है। तो ये तीन बातें फर्स्ट पार्टी में थी। सेकेंड पार्टी से मुलाकात, खुशी के लिए बातें लिखा है, चार बातें हैं यहां। पहली बात है खुशी क्या है, दुआ और दवा।
दवा
खुशी क्या है, दुआ भी है और दवा भी है। इससे तीन चार बातें हो जाती है। सबसे पहले तो हिसाब किताब जो है वो चुप्तू हो जाती है, सूजी से काटा बन जाते हैं, हिसाब किताब सहज चुप्तू हो जाते हैं, और हिसाब किताब हल्के रहेंगे, उसका प्रभाव तुम पर नहीं रहेगा, क्योंकि खुशी दुआ और दवा है। हाय संसार के लोग करेंगे और तुम क्या करोगे, वाह मीठे बाबा करोगे। ये तो है थियोरी जो मुर्गी में आई, इसका प्रैक्टिकल में क्या करना है। खुशी टैबलेट है, मेडिसिन, जो व्यक्ति खुश होते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं, और जो व्यक्ति दुखी होते हैं उनके ठीक होने में टाइम लगता है। ये हमारा अध्ययन का अनुभव है। जो पहले से ही दुखी है, बीमारी हो गई है पर पहले से ये सोच के है कि इसको कोई ठीक नहीं कर सकता, और ये तो मुझे नहीं लगता ठीक होगा, पहले से ही सोच के रखते हैं। देख लो तुम, ट्राई कर लो, डॉक्टर को भी कहते हैं देख लो होगा तो ठीक, पर विश्वास नहीं है कि होगा। सबसे ज्यादा ठीक वो लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा कम बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता, जो ज्यादा साइड इफेक्ट्स के बारे में गूगल पे जाके पढ़ते हैं उनको सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक दवाई दो तो उसके 10 साइड इफेक्ट्स लेके आते हैं और फिर ओपीडी में दिखाते हैं, ये है आपके ज्ञान के लिए, आपको बता दो आपने जो गोली लिखी ना उसके ये 10 चीजें होती है, और इसमें से ये जो पांचवें नंबर का है ना शक्कर हल्का सा, ये मुझे कल से चालू हो गया है। और दूसरे हमारे बहुत सारे गरीब पेशेंट होते हैं, उनको भर्ती जी के भर्ती हो जाओ भर्ती ये दवाई जो देना है तो, और ठीक होके चले भी जाते हैं। बड़े बड़े कठिन से कठिन बीमारी वाले स्नेक बाइट वाले यहाँ पर जहां बचने की संभावना बहुत कम होती है वो सब, और बाकी थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। जैसे एक डॉक्टर कभी बिहार के किसी आदिवासी क्षेत्र में गए तो वहां पे एक मरीज उसको मिल गया, तो मरीज ने कहा मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है एक महीने से बीमार हो कुछ कीजिए। उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, एक पत्ता लिया वहां से और उस पत्ते पर उसने लिख दिया कि ये लिख रहा हूं ना ये सुबह शाम खाना है इसको। उसने कहा ठीक है, तो मरीज चला गया। एक महीने के बाद वो डॉक्टर उस मरीज से मिला, उसने पूछा कैसे होगी, उसने कहा एकदम बढ़िया हूं फर्स्ट क्लास, बीमारी आज तक तो कोई नहीं ठीक कर दी, आपने ठीक कर दी। और वो पत्ता वहां के लिए रखे तो पत्ता कौन सा पत्ता, वो जो आपने दिया था उसी को तो खाया सुबह शाम टुकड़े टुकड़े करके एक महीने से, दवाई खाई नहीं, जो पत्ते पर दिखा था उसी को टुकड़े टुकड़े करके टुकड़े टुकड़े एक महीना चलाया पूरा और एकदम स्वस्थ। फेथ बड़ा काम करता है, और जैसे फेथ है वैसे खुशी का भी है। जो खुशी में रहते हैं उनको बीमारी आ भी जाए तो फटाफट ठीक हो जाती है, और जो दुखी रहते हैं उदास रहते हैं उनकी बीमारी ठीक होने में बड़ा टाइम लगता है, और वो कभी स्वीकार भी नहीं करते ये ठीक इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हम दुखी है, उनके कारण बहुत सारे होते हैं। चलो दवाई ठीक नहीं, ये लोग ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, चलो रहता है। तो बाबा ने कहा खुशी दुआ है और दवा है, दोनों चीज है, हैप्पीनेस। इससे हिसाब चुप्त होंगे, हिसाब सहज होंगे, सूली से काटा होंगे, हाय हाय नहीं करेंगे, वाह वाह करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी बीमारी आ जाए। और शरीर की बीमारी आएगी, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे शरीर की बीमारी नहीं आई, कुछ ना कुछ शरीर को होगा, और जब होगा तो ही परीक्षा की घड़ी, तभी ये पता चलेगा कितना योगी है कौन, तभी ये पता चलेगा कितना ज्ञान को हजम किया है, कितना बचाया है इस ज्ञान शरीर से डिटैच्ड होने की। जो परीक्षा है वो बीमारी के समय लेती है। तो सबसे पहली बात खुशी क्या है, दुआ और दवा। दुआ भी है, दुआ का काम करते हैं, और जिस आत्मा के पास बहुत दुआ है उसकी बीमारी थोड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंडियन फिल्म हिस्ट्री में है। अमिताभ बच्चन कूली फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी कोई तो एक फिल्म में, कहा जाता है उनको चोट लगी जबरदस्त, और वो चोट इतनी ज्यादा थी कि पहले पता नहीं चला दिन तो ऐसे ही है, फिर एक हॉस्पिटल में एडमिट, फिर वहां से पता चला थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है, फिर वहां से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, फिर वहां ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद फिर कॉम्प्लिकेशन हुआ, री ऑपरेशन हुआ, और उस समय ऐसा कहा जाता है, और उस समय का हमने न्यूज़पेपर भी पढ़ा था, वो जिस दिन वो सब क्लिक किया है था उसमें, कि पूरा देश उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, पूरे देश के देश आरतियां हो रही थी, मंदिरों में, चर्चेस में दुआएं, मास कॉम्युनिकेशन, उपवास करती थी स्त्रियां, ये ठीक हो जाना चाहिए बस। तो दुआ, दुआ बड़ा कारगर सिद्ध होती है कभी कभी। उसके लिए हमें भी दूसरी आत्माओं को दुआ देते रहे। बाइबल में एक जगह लिखा है, यदि तुम किसी बीमार व्यक्ति को देखने जाते हो, उसको देखते समय यह याद करते हो कि उसने मेरे साथ क्या क्या बुरा किया था, तो कुछ भी नीचे लेके जाते हो, बाजू रखो, पहले जाओ चर्च में या कहीं पर और भगवान से प्रार्थना करो और उसके साथ दोस्ती करो, अच्छे भाव रखो और फिर वापस आके उसको दो। ये भाव से नहीं दो उसको, फर्स्ट रिकंसाइल, उसके साथ दोस्ती संबंध बनाओ और फिर उसके साथ जो करने करो। तो दुआ, दवा, खुशी, ये खुशी का काम करते हैं। दूसरी बात यहां पर बोली, खुशी के गीत गाओ, पाना था सब पा लिया ये गीत गाओ, भाग्य के गीत गाओ। संसार के लोगों को क्या मिलता है? धन मिलती है, संपत्ति मिलती है, संतान मिलती है, तुम्हें कौन मिला? भाग्य में, भाग्य मिला, मिला था मिल गया भाग्य में, कैसी अद्भुत बात, भाग्य विधाता नहीं भाग्य में मिल, कितनी बड़ी बात है। अब और कुछ चाहिए ही? जैसे दिखाया वो राजा कहता है कि कल सुबह जो जिस वस्तु को चाहिए आ जाओ, हाथ लगाओ ले जाओ, लोग आना चालू हो जाते हैं सुबह से। पहले भी बताया था, कोई हाथी लेता है, कोई घोड़ा लेता है, कोई राजकोष लेता है, कोई सिंहासन लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, सब अपना अपना लेके जा रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची खड़ी रहती है, राजा पूछता है तुम कुछ नहीं लोगी? ऐलान हो चुका है कि जो जिस वस्तु को हाथ लगाएगा राज्य में वो उसकी होगी। वो छोटी सी बच्ची दौड़ के जाती है राजा को हाथ लगाने, राजा ही मिल गया, राजा मिल गया अर्थात सारी वस्तु है उसकी। अब भाग्य के पीछे क्या भागना? भाग्य विधाता को हाथ लगा, भाग्य विधाता पकड़ लिया तो सब हमारा, और कुछ पाने की आवश्यकता? ये लू वो लू वो लू वो लू, घर के मालिक को पकड़ लो, घर तुम्हारा, मास्टर की हाथ में आ गए। तो ये दूसरी बात बाबा ने कहा, गीत गाओ, भाग्य के गीत गाओ, प्राप्तियों के गीत गाओ, पाना था सब पा गया, सब कॉन्शियस माइंड का प्रिंसिपल काम करता है, ये सोचना कि मेरे पास सब है तो क्या होगा, अब यही सब आ जाएगा। जो व्यक्ति ज्ञान में नहीं चलते उनके लिए सोचना ये देवकुल की ही आत्मा है, वो आप ही ज्ञान में आएंगे। जो सहयोगी नहीं है उनके लिए सोचना ये सबसे बड़े सहयोगी, वो अपने आप से योगी बन जाएंगे। जो सोच वो ही होगा, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, जहां से क्लास की शुरुआत की थी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, सत्य को ढूंढना। और बाबा ने कहा, किसी ने कह दिया तुमको कि यहां सबसे बड़ा भाग्य मिलता है? बड़ों ने कह दिया, इसका मतलब क्या? तुम मान लोगे, अनुभव। संगम युग क्या है? अनुभव करने का युग है, हर चीज की जांच पड़ताल करो। जैसे इसके पहले भी सुनाया था, जंगल में एक बार हड़कंप मच गया, सारे पक्षी प्राणी पशु भाग रहे हैं, एक खरगोश दोपहर की नींद कर रहा होता है लंच के बाद, एक झाड़ के पास, तो अचानक धड़ाम की आवाज आती है और वो उठता है और उसको याद आती है उसके पूर्वजों की बात कि जब ऐसे धड़ाम की आवाज आए तो समझ लेना सृष्टि का अंत नहीं, गरीब है और वो चिल्लाता है भागो भागो भागो, सृष्टि का विनाश होने वाला है, धरती फटने वाली है। सारे खरगोश कहते हैं क्या धरती फटने वाली है, भागने लगते हैं सब। कुछ कुछ खरगोश उससे भी पीछे भाग आगे भागने लगते, सब भागने लगते भागने लगते। तोता मिलता है क्या हुआ धरती फटने वाली है भागो, और भागता है। हाथी मिलता है क्या हुआ धरती फटने वाली है, हाथी भागता है, हाथी के झुंड भागते क्या हुआ। भालू मिलते हैं भालू क्या हुआ धरती फटने वाली है भागते। शेर खड़ा रहता है ऊपर पहाड़ पर, ये क्या हो रहा है सारा जंगल भाग रहा है। वो पूछता है क्या हुआ, वो कहते पूछने का बात टाइम ही नहीं है बताने का, भागो तुम भी धरती फटने वाली है। तो शेर का भी अपना रहता है, वो कहते हैं रुको सब बताओ किसने बताया तुमको। भालू कहते मुझे हाथी ने बताया। हाजी वो कहते तोता तुमको किसने बताया। करते 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 फिर पता चलता है, शाम तक पता चलता है कि एक खरगोश का एक झुंड है वहां से चालू हुआ। खरगोशों को बुलाया जाता है तुमको किसने बताया, वो कहता है ये खरगोश है। वो कहता है क्या तुमने ये फैलाया कि धरती फटने वाली, वो कहते हैं हाँ। वो कहता हूँ कैसे हुआ, बोलता मैं एक झाड़ के पास आम का पेड़ आम के पेड़ के पास में लेट रहा था और बाजू में एक नारियल का भी पेड़ था। तो जब मैं पेड़ पर लेट रहा था अचानक धड़ाम की आवाज आई, शेर कहते हैं मुझे ले चलो। जाके देखते हैं तो ऊपर से एक नारियल गिरा होता है नीचे। वो क्या कहते हैं ये नारियल तो नहीं, कहते हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि ऐसी आवाज थी। मैं तो आम खा के सो गया पर ये बाजू का नारियल जरूर गिरा होगा। तो एक ने कहा और सबने माना और कहां से कहां पहुंच गए। तो फैलती है खबर, वो जंगल में खबर फैली, अभी सोशल मीडिया पे भी फैलती है, ज्यादा अंतर नहीं। तो बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करो, सत्य को ढूंढो, सत्य क्या है जानो, अनुभव करो। संगम युग अनुभव करने का युग है। उल्ले में कोई बात आ गई तुरंत क्यों मानना है, छोड़ो उसको, सोचो उसके बारे में, टाइम तो दो तो ही मान। और फिर लास्ट बात चौथी सेकंड पार्टी में वरदान दिया है प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो ऐसी ये टोटल सात बातें थी दो पार्टियों में। पहली बात बताई संगम युग प्राप्ति स्वरूप युग है, दूसरा बताया संगम युग पुरुषोत्तम युग है, तीसरा बताया संगम युग सुविधा। ये पहली पार्टी थी। और दूसरी पार्टी में खुशी दुआ भी है तो दवा भी है, खुशी पर काम करना है, खुशी को समझना है, खुशी क्या है और वो कौन सी बातें थी जो मेरी खुशी का अपहरण कर ले जाती है, क्यों खुशी गुम हो जाती है, कभी कभी क्यों ऊपर एकदम खुशी और कभी कभी एकदम लो क्यों होता है, या अप डाउन क्यों होते रहते हैं, उसके कारणों को ढूंढना है। और वो केवल मैं ढूंढ सकता हूं, दूसरा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो मेरे कारण है। तो पहली खुशी की बात, दूसरा खुशी के गीत गाते रहो क्योंकि तुम्हें कौन मिल गया है भाग्य विधाता, डायरेक्ट भाग्य विधाता मिल गया। तीसरी बात बताई सुनी सुनाई बातें, और चौथी बताई आप वरदान देते हैं प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माएं, संतुष्ट रहो करो भी। तो ये थी पार्टियों से मिलाकर आज के मुरली में एक दो पॉइंट्स आप बता दो फिर क्लास पूरा करते हैं। सुबह की साकार मुरली
क्या मुसीबत है बताओ,
क्या मुसीबत है बताओ, ऐसे आपको याद नहीं कर सकते इतना मीठा काम, इस जैसा मीठा कोई दूसरा है नहीं। मोह सभी इस देह से निकाल दो, पूरी सारी दुनिया से हटा दो। और कैसे और वो इसे
नहीं
लेना चाहिए, बस प्रतिज्ञा कर लो। एक को ही याद करेंगे, दूसरों को याद कर करके करके धोखा खा खा के कितने दुखी हुए फिर भी छोड़ दे। भक्ति मार्ग में श्रद्धा से याद करते हैं, प्यार से याद करते हैं। भक्ति मार्ग में जब प्रसाद लेने जाते तो दो हाथ आगे बढ़ाते, ज्ञान मार्ग में टोली लेने जाते तो दूर से ऐसा हाथ बढ़ाते ताकि दादी को झुकना पड़े, एक हाथ से टोली ले। भक्तिमान में तो वहां से लेते थे प्रसाद, ये प्रोग्रेस की है। और चाट लिखो और मौत सामने कर रहा है तो क्या पूजा करे मौत की, क्या डरे? वहां से वैसा लेना है तो ले लो। सेवा नहीं करते हैं और शरीर को क्या चाहिए? और ब्रह्मा भोजन और तंदूरी और अचार पाव भाजी। पाव भाजी खा लिया आज माता ने, पाव भाजी खाई तो शरीर को क्या चाहिए? क्या काम पता नहीं, दो रोटी और कोई भूख ना नहीं।
धंधे में ज्यादा पसंद है
पति सर्वत्र बन जाते उसमें भी कुछ नहीं। और क्या करना? शुभ चिंतन हो, शुभ चिंतन में वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से सब कुछ निकल जाना चाहिए। बड़ा पावरफुल वाक्य है, एक जगह कहा वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से सब कुछ निकल जाना चाहिए, एक जगह कहा है तुम्हारे शरीर में जरा भी मोह नहीं होना चाहिए, एक तीसरी जगह कहा है तुम्हें किसी को याद ही नहीं करना है, फिर एक चौथी जगह कहा है कि तुम बाप को याद नहीं कर सकते इतने बैठे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताओ, मुसीबत क्या है? क्यों करते नहीं? और आदमी
में आने वाली आत्मा है और लास्ट में आने वाली आत्मा में नेचर डिफरेंस क्या होगा?
क्या
मांगेंगे जो आदि में आने वाले होंगे और जो लास्ट में आने वाले होंगे वो
पता
ही नहीं।
बाप जैसा
बेटा
तो
एक
साल के
बाद बाप बाबा एक्सट्रैक्ट करनी जो कि धारणा है। एक होती है रूटीन पॉइंट्स, ज्ञान वाली पॉइंट्स जो रोज आती है, कुछ पॉइंट्स होती है कुछ पॉइंट होती है बड़ी कड़ी होती है, बड़ी स्ट्रांग होती है। तो कल की जो साकार भूमि थी मोह पर सबसे स्ट्रांग हो गई थी। जब बार बार देख 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 में कड़े शब्दों का प्रयोग किया तो उनमें से कुछ बातें निकालनी है, लिख के रखनी है, रिवाइज करनी है, याद करनी है, दूसरों को सुनानी है, वो और गहरी